उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है प्रभुपाद उन थ्योरी को, भागवतम और गीता को, वो हमें लेटर से समझ आता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी थी। अफकोर्स लेटर्स का, अफकोर्स लेटर्स प्रभुपाद अपने डिवोटीज को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को लिख रहे हैं, एक पर्सनल चीज़ भी है, बट बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं लेटर्स में। सो मैं एक उनमें से एक लेटर पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद जी का, और ओके हियर इज अ लेटर नाउ। प्रभुपाद जी ने लेटर ये अब ब्रह्मानंद स्वामी को लिखा है, लेटर डिवोटी हैं, कलकत्ता से लिखा है, 18 नवंबर 1967, मतलब ऑलमोस्ट इस कौन की शुरुआत में। और प्रभुपाद लिख रहे हैं उनको कि कि मैंने कीर्तनंद स्वामी और हयग्रीव, कोई डिवोटी थे कीर्तनंद स्वामी और हयग्रीव, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट, तो प्रभुपाद इसको सॉल्व कर रहे थे। ऑफ कोर्स भक्तों के समाज में लड़ाई तो होती है नहीं, जहां दो कंगन है वहां आवाज जरूर आएगी, जहां दो व्यक्ति है वहां पे खटपट जरूर होगी, चाहे वो कितने बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ में तो वैसे होती है। सो इसीलिए प्रभुपाद ने लेटर लिखा ब्रह्मानंद स्वामी को, क्योंकि ब्रह्मानंद स्वामी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवोटी थे इस्कॉन में। तो उन्होंने कहा कि तुम देखो इस मैटर में कैसे क्या चल रहा है कीर्तनंद महाराज और हयग्रीव के बीच में। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने भी कोशिश की है उन दोनों के बीच में रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट, मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एटलीस्ट हयग्रीव फ्रॉम लेटेस्ट लेटर रिवील्स दैट ही इज नॉट आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एज वी अंडरस्टैंड, मतलब हयग्रीव जो है उन्होंने इस्कॉन नहीं छोड़ा, कीर्तनंद महाराज ने इस्कॉन छोड़ दिया था टेम्पोरली, उनकी लड़ाई हो गई, तो उन्होंने कहा सब बकवास है मैं कम्युनिटी छोड़ के जा रहा हूँ। सो प्रभुपाद इस लेटर में बता रहे हैं कि बेसिकली पॉइंट ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए डिवोटी का एसोसिएशन मत छोड़ो, ये लड़ाई होगी, ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि लड़ाई नहीं होगी, वो होगी, क्योंकि बड़े बड़े भक्तों में भी लड़ाई हुई है, ऐसी बात नहीं कि हमारे में हो रही है, बड़े बड़े भक्तों में भी मतभेद होता रहा है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे कहीं गोस्वामी, जब गोस्वामी से षट गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी इतने बड़े डिवोटी से वो भी डिस्कस करते थे कैसे प्रीचिंग करनी है, तो उनमें भी आइडियाज अलग अलग होते थे, आपके हर एक आइडियाज अलग अलग होते हैं ना। प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद ने एक और लेटर में कहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उससे एटलीस्ट ये पता लगता है कि ये प्रूव होता है कि मायावादी नहीं है। मायावादी समझते हैं ना आप लोग, मायावादी, मायावाद सिद्धांत कहता है कि हम सब एक है, नहीं कहते नहीं है आस्था में संस्कार में सारे गुरु की फिलॉसफी है हम सब एक है, हम सब एक है, ठीक है गुरु महाराज हम सब एक है, आप अपने सारे बैंक अकाउंट का पैसा मेरे बैंक में डाल दो क्योंकि हम सब एक है, नहीं पैसे की पैसे में एक नहीं है वैसे एक है, दैट्स अ स्टूपिड फिलॉसफी, हम सब एक नहीं है, हम सब अलग अलग है, हमारे विचार अलग अलग है, हमारा स्वभाव भी अलग अलग है, हमारी आत्मा भी अलग अलग है। सो प्रभुपाद ने कहा लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब एटलीस्ट इतना तो है कि मायावाद सिद्धांत गलत है, जो लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा है कि कंप्लीट नॉनसेंस है, अगर हम सब एक है तो हमारा स्वभाव अलग अलग क्यों है, दैट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि हम सब एक नहीं है, सिंपल। सो प्रभुपाद की बहुत अच्छी इंसाइट थी, नहीं प्रभुपाद उस लड़ाई में भी कुछ अच्छाई देख रहे हैं, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोयले की खान में हीरा मिल जाए तो अब लोगे या नहीं लोगे, और हीरा कहाँ मिलता है, कोयले की खान में मिलता है, तो वहां से उठा लेते हैं, ये थोड़ा ना कहते हैं कोयले की खान में सारे काल कालक लग जाएगी, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई कोई गंदगी से भी कोई अच्छाई मिले तो उसको ले लेना चाहिए। धर्मशास्त्र में लिखा है कि विवाह करना चाहिए किसी कुलीन स्त्री से, कुलीन स्त्री मतलब एक अच्छे कुल की स्त्री से, नहीं मतलब कुल कुल अच्छा होना चाहिए, ये ट्रेडिशनली ऐसा कहा जाता है, जैसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण फैमिली में शादी करना चाहिए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग होती है ब्राह्मण फैमिली की, नहीं सो आइडियली। मगर शास्त्र में भी लिखा है कि अगर कोई स्त्री निम्न कुल की हो मगर उसका चरित्र ऊंचा हो तो उसे विवाह कर सकते हो, क्योंकि अगर कोयले में भी हीरा मिले तो उठा लेना चाहिए, दैट्स द आइडिया। सो प्रभुपाद ने देखा लड़ाइयां हो रही हैं डिवोटीज के बीच में, अब प्रभुपाद ने वहां से एक शिक्षा ले ली कि यस, कि ये मायावाद सिद्धांत गलत है, आत्मा एक नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हम सब अलग अलग हैं, हमारे आइडियाज अलग अलग हैं और वो हमेशा रहेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे ठीक है कि एटलीस्ट उस भयग्रीफ ने इसको नहीं छोड़ा, कीर्तनंद स्वामी है वो थोड़े प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो थोड़ा अजीब सा एक्ट कर रहे हैं, नए नए लोग हैं तो प्रभुपाद ने कहा एक्ट अजीब सा कर रहे हैं, पर प्रभुपाद ने कहा वेल द होल एपिसोड वॉज जनरेटेड बाय पर्सनल ग्रज। प्रभुपाद कह रहे हैं वेल मेरे हिसाब से तो उन दोनों में लड़ाई हो रही है, क्यों, क्योंकि उन दोनों के अपने अपने पर्सनल ग्रज, समझते हैं ग्रज कैसे कहेंगे, हाँ पर्सनल मतभेद है कुछ, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। बट एनी वे प्रभुपाद कह रहे हैं चाहे कोई लड़ाई हो चाहे मतभेद हो फिर भी भक्तों को मत छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे हमारी कितनी लड़ाई होती है घर में, क्या घर छोड़ते हम, कितना मतभेद होता है पेरेंट्स से, पेरेंट्स से तो बहुत ज्यादा होता है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं यूथ में आते हैं तो बहुत लड़ाई होती है पेरेंट्स से, होती है नहीं होती है, फादर कुछ कह रहे हैं बच्चा कुछ कह रहा है, बात नहीं मान रहा, मदर की बात नहीं मानते, एक फेज आता है बच्चों की लाइफ में जब मदर के एंटी हो जाते हैं, वो सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपका हुआ है नहीं हुआ है, होता है नहीं होता है, एक पीरियड आता है जिसमें मम्मी गंदी लगने लगती है, नॉनसेंस लगती है, जब बच्चा यूथ बनने लगता है, क्योंकि बचपन में तो उसको समझ नहीं आता कि ये मम्मी क्या है, उसको अच्छी लगती है, जब बड़ा होने लगता है तो उसको पता लगता है कि ये तो स्त्री है, दैट्स अ प्रॉब्लम, मम्मी नहीं है ये औरत है, औरत मीन्स थोड़ा खाली है, ऐसा बचपन में ऐसा नहीं लगता, बचपन में मम्मी सबसे इंटेलिजेंट होती है, उनमें फेथ होता है नहीं, तो वो एक होप टूट जाती है, अब यार ये क्या हो गया अचानक से, तो कुछ भी नहीं आता क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि आने लगी। सो उस पीरियड में लड़ाई हो जाती है मदर से, उसको अच्छी नहीं लगती, फिर धीरे धीरे बड़े होकर फिर उसको समझ आता है नहीं नहीं एक्चुअली ठीक है ये ऐसा ही है तो अब मुझे संभालना चाहिए सिचुएशन। बट पॉइंट है कि चाहे कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, कितनी आदत सब में लड़ाई होती है, बट कोई घर छोड़ता है नहीं छोड़ता, क्यों, क्योंकि हम आसक्त हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं उतनी आसक्ति भक्तों के साथ होनी चाहिए, ये नहीं कि अरे मैं मंदिर नहीं आऊंगा, कहां जाओगे, भी घर जाऊंगा, घर के मंदिर घर नहीं लग रहा आपको, कहां जाओगे आप अपनी अपनी बीवी की गोदी में, होता है रियली में ऐसा होता है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब यह कि एक इमोशनल सपोर्ट होता है, एक वाइफ होते नहीं होती है इमोशनल सपोर्ट, तभी तो शादी होती है, इमोशनल सपोर्ट आता है वाइफ, इसमें खराबी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि इमोशनल सपोर्ट वाइफ से लेने से अच्छा इमोशनल सपोर्ट आप किससे लो, डिवोटी से और भगवान से लो। मीरा कौन थी, क्या शादी की मीरा ने, नहीं की, इमोशनल सपोर्ट समझते हो ना क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट क्या होता है हिंदी में कैसे कहेंगे, हिंदी बड़ा मुश्किल है, इमोशनल सपोर्ट मतलब कैसे कहेंगे यार, है क्या क्या क्या, भावनात्मक सहयोग, हाँ एक सहारा रहता है ना पति को अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि अपने इमोशन डिस्कस कर सकता है, और किससे डिस्कस करेगा वो अपने दिल की बात, तो एक सपोर्ट होता है वो। सो वेल मीरा ने वो सपोर्ट कहाँ ढूंढा, किसी आदमी में नहीं ढूंढा, भगवान में ढूंढ लिया, उसी को तो भक्ति कहते हैं, भक्ति उसी को कहते हैं। तो वेल इसलिए जो सपोर्ट है जो सहारा है वो भक्त और भगवान होने चाहिए, अपने घर वाले नहीं होने चाहिए, तब भक्ति आगे बढ़ेगी, और उनको भी सिखाना चाहिए तुम्हारा सहारा भगवान है, सो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद कह रहे थे कि अगर कोई प्रॉब्लम है डिवोटीज के बीच में तो डिवोटी से डिस्कस करो, क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस पर्सनल गज इज नॉट इनह्यूमन एज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स दैट इंडिविजुअलिज्म इज अ कॉज ऑफ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं जो लड़ाई है डिवोटीज के बीच में ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये तो होती है, ये तो होगी, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सब इंडिविजुअल है ना, सब अलग अलग है ना, तो लड़ाई होगी, तो घबराना नहीं चाहिए। पॉइंट है कि हम घबरा जाते हैं कि हाँ इस भक्त ने ऐसा कह दिया, अब क्या होगा, अब मैं मंदिर में कैसे जाऊंगा, होता नहीं होता है, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था कल, अब मैं जाऊंगा क्या होगा। तो ये सब हमें भय आ जाता है, नहीं उस चीज का। प्रभुपाद कह रहे हैं मगर भय नहीं करना चाहिए, तो नेचुरल है, क्या हो गया, किसी को बोलते नेचुरल है, जस्ट वर्क इट आउट, वर्क इट आउट समझते हो, वर्क इट आउट समझते हो ना,
छोड़ो और आगे बढ़ो,
नहीं नहीं डील करो और आगे बढ़ो,
काम करो,
छोड़ो नहीं, वर्क इट आउट, विचार छोड़ नहीं पाओगे ना,
काम करो,
जब भी ऐसे कोई लड़ाई हो जाए उसको कन्फ्रंट करो, भागो मत वहां से, किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया पीछे से, आपको पता लग गया और उसने बोल दिया, फिर आप अपने माइंड में सोच रहे हो उसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसे बोल कैसे सकता, सोच सोच के आपके कान से धुआं निकलने लगा, घर में बैठे हो, चैंटिंग छूट गई, मंदिर भी आना बंद कर दिया क्योंकि उसने कह दिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, नहीं उसको कन्फ्रंट करो, जाके बात कर लो, वर्क इट आउट कहते हैं, नहीं बात कर लो सिंपल, भी ऐसा क्यों कहा था, हो सकता है आप अपने मन में कोई और अनशन सोच के ऐसे ही सोचे जा रहे हो सकता है उसने किसी और दृष्टिकोण से कहा हो, नहीं वो कहेगा नहीं नहीं मेरा मतलब तो ये नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, चलो ठीक है सॉल्व हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि पहली बात तो है कि अगर कोई लड़ाई होती है तो डरो मत, क्योंकि ये होगा, कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो डरो मत, ये होगा, नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, एक कुत्ता भौंकेगा तो भौंकेगा नहीं, है नहीं, कोई डरता है जब सड़क पे जाते हैं कुत्ता भौंकता है, डरता है कोई, कोई नहीं डरता, क्योंकि हमें पता है उसका स्वभाव है भौंकना, यहाँ का सुबह 2 बजे जा रहे हो, 2 बजे भौंकेंगे तो डर जाओगे, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट टाइम, बट वैसे ठीक है कुत्ता भौंक रहा है तो ठीक है, उसका स्वभाव है भौंकना, कौन सी बड़ी बात है, नोबडी गेट्स फियर, नहीं। सो उसी प्रकार फर्स्ट टिप इज डोंट फियर, सेकेंड टिप इज कि कन्फ्रंट करो, प्रॉब्लम्स को अगर आप फेस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी जगह एप्लीकेबल है, आपके मेटेरियल लाइफ में भी, आपके क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी, अगर आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहोगे तो वो बढ़ जाएंगी, जैसे अगर कपड़े में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको थोड़ा फट गया तो क्या होगा, आपने देखा नहीं तो क्या होगा, तो फटता ही रहेगा, वो उसको इमीडिएटली सील दो। तो इसलिए हमेशा, मगर हम ऐसा करते नहीं, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम डरपोक बिल के बैठ के और छुप जाते हैं और प्रॉब्लम चलती रहती है, फिर एक दिन आप उसको थप्पड़ मारोगे, आपको थप्पड़ मारेगा बिना किसी कारण के, ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। वैसे आपने देखा नहीं है डिवोटी कम्युनिटी, मतलब मैं एक बार इस्कॉन मंदिर में था, वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, मतलब बलराम को पता है कि डिवोटी ने बंदूकें उठा ली मेरे सामने, तो मैं तो शूट कर दूंगा, उसने भी उठा लिया, नहीं बताऊंगा, यहां तक बढ़ गई प्रॉब्लम। सो आग में घी डालोगे तो आग बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप सॉल्व कर लो, सिंपल है, जाके पूछ लो भी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला आपने, मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा था, मैं तो ऐसे नहीं, तो बोलेंगे ठीक है आगे से आपको कुछ बोलना है तो मुझसे पूछ के बोलना, वरना ऐसे नहीं बोलिएगा, कहा तो फिनिश हो गया। सो फैमिलीज में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, फैमिलीज में भी वो मतलब इतनी प्रॉब्लम आती है कि सास बहू को जला देती है, होता है नहीं होता है, आजकल तो हो ही रहे, उसको जला दिया या बहू ने सास को उठा के फेंक दिया गैलरी से नीचे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मतलब टीवी में तो आ ही रहा है सब। क्यों है? क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो सोच रहे हैं अभी ठीक है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा होता है नहीं होता है? फैमिली में हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है हम सहते रहेंगे, ठीक है आप सह सकते हो तो सह लो, मगर पॉइंट है कि एक पॉइंट के बाद आप ब्रेक डाउन हो जाओगे, फिर डिसरिस्पेक्ट शुरू हो जाएगी। इसे अच्छा अभी से सॉल्व कर लो, जाओ बात कर लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। सो प्रभुपाद ने बोला है कि व्हेन सच इंडिविजुअलिज्म इज एम्प्लॉयड इन द सेंटर ऑफ कृष्णा देयर इज नो हार्म इवन इफ देयर इज पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग। देख रहे हो, पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट इवन एट हायर लेवल, देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर लविंग कृष्णा इवन इन पार्टी ऑफ श्रीमती राधा रानी। प्रभुपाद कह रहे हैं गोलोक में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इससे बच नहीं पाओगे। आप सोचोगे यार यहां तो ये डिवोटी ऐसा बोल रहा है, डिवोटी गोलोक में भी ऐसा चलेगा, पीछे से कोई बोलेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा के राधा रानी है, एक एक कैंप ही है, और दूसरा कैंप कौन सा? चंद्रावली का, उन्होंने फाइट चलती है। तो वहां जाओगे आप कहोगे हो राधा रानी को तो मैनेजमेंट सेमिनार देना पड़ेगा, तो इन्होंने तो सीखा ही नहीं कुछ। यू कांट एक्सपेक्ट लाइक दैट। ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मतलब दिस इज प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि गोलोक में हवा में उड़ रहे हो गए और बंसी बजा रहे हो गए, और ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेम है भगवान के लिए, मगर वो लड़ाई किसके लिए हो रही है? वो भगवान के लिए, अपने लिए नहीं हो रही, बस ये फर्क है वहां। और लड़ाई भी भगवान के लिए होती है, क्योंकि मगर लड़ाई करने का स्वभाव हम रोक नहीं सकते। जैसे हनुमान जी और जितने भी वानरों ने किसके लिए लड़ाई की? राम के लिए। तो अच्छा है लड़ो, तो गोलोक में चंद्रावली और राधा रानी के बीच में लड़ाई हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो मधुमंगल और राधा रानी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मगर उन दोनों की चेष्टा क्या है? कि हम कृष्ण को संतुष्ट करें। तो भक्तों के बीच में भी ऐसी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, एक भक्त सोचता है नहीं भगवान की सेवा ऐसी होनी चाहिए, दूसरा सोचता है ऐसी होनी चाहिए ज्यादा अच्छी है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पर। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने तो ऐसा कहा था, ये तो ठीक ही था, और वो उन्होंने ऐसा कर दिया, हो सबके अपने अपने आइडियाज अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बात कर लो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दैट्स ओके, इट इज अ काइंड ऑफ रसा टू कम्पीट इन लविंग अफेक्शन सेंटरिंग अराउंड कृष्णा। प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं कि गोलोक में जो लड़ाई है वो रस है, तो रासलीला में और लड़ाई में गोलोक में कोई अंतर नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम रासलीला में ही जाएंगे, गोपियां कृष्णा, बट वहां पे लड़ाई भी है, उसको क्या करोगे? वो भी उतनी मधुर है जितनी रासलीला है। तभी तो वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, क्या है वो मधुर मधुर में कैसे है? तो ठीक है, सृष्टि मधुरम यष्टि मधुरम, कि भगवान की सृष्टि भी मधुर है, वहां की लीलाएं भी मधुर है, भगवान की पनिशमेंट भी मधुर है, ऐसे डिवोटीज की लड़ाई भी मधुर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो गया? बल्कि अच्छा है अगर लड़ाई हो रही है तो, ज्यादा अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़ाई नहीं होगी ना तो क्या होगा फिर? है तो प्रेम होगा। हाँ प्रेम होगा वो तो ठीक है, चलो अगर जैसे आप आराम से बैठे हो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ भी नहीं होगा तो रस नहीं आएगा। नहीं, लड़ाई से तो रस आता है नहीं, आता नहीं आता है, मज़ा उसी में आता है, प्रेम में आता मज़ा नहीं आता है नहीं। अब मैं लेक्चर कर रहा हूँ, कौन आया है? अगर यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाए पंकज में और बलराम रूम में चिल्लाने लगे तो सभी आ जाएंगे, ये क्या हो गया, फोन करके आएंगे, भीड़ लग जाएगी, क्या हो गया? दैट्स ओके, क्योंकि उसमें मजा आ रहा है ना, मजा आता है ना उसके अंदर, दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। इसलिए गोलोक में लड़ाई होती है। आप पूछोगे गोलोक में क्यों लड़ रहे हैं? मतलब गोलोक में, मतलब वहां तो गोलोक तो तीन गुणों से परे है, शुद्ध प्रेम है, वहां पे क्या लड़ाई हो रही है? बट एक्चुअली जो लोग ऐसा कहते हैं वो अनाड़ी है, क्योंकि इनको पता नहीं कि गोलोक में सबके फोकस क्या है, भगवान को आनंद देना, कृष्णा रसिक शेखर है, रस के सागर है, भगवान को सारे रस चाहिए। सो वात्सल्य रस भी चाहिए, माधुर्य रस भी चाहिए, दास्य रस भी चाहिए, शांत रस भी चाहिए, और लड़ाई का रस भी चाहिए, विभत्स रस, रौद रस, रूप गोस्वामी सब कुछ लिख रहे हैं। सारे रस भगवान, सारे रस का आस्वादन करते हैं। तो डिवोटीज इस तरह से भगवान की सारी लीलाएं चलती हैं गोलोक के अंदर। इसको कहते हैं रसिक शिरोमणि, भगवान रसिक शिरोमणि, रसिक शेखर है। तो नो प्रॉब्लम, वी शैल देयरफॉर ट्राई टू ब्रिंग बैक हयग्रीव एंड कीर्तन टू देयर सेंसेस। आफ्टर ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग विद पर्संस अफेक्टेड बाय माया। सो प्रभुपाद कह रहे हैं वेल हम लोग ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। इस कौन में जो लोग आ रहे हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, ये भी हमें पता है। आप सब परमहंस हो? परमहंस हो क्या आप सब? नहीं, मैं भी नहीं हूँ। कोई भी यहाँ पे परमहंस मतलब शुद्ध भक्त, यहाँ पे कोई शुद्ध भक्त नहीं है। अगर हम शुद्ध भक्त होते तो वैसे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे कि आपको कैसे पता कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। मतलब मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मगर मैं आपके बारे में भी कह रहा हूँ आप नहीं हो, तो आप कह सकते हो आपको कैसे पता मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। हो सकता है मैं शुद्ध भक्त हूँ, तो इसका आंसर क्या है फिर? शुद्ध भक्त ये कभी नहीं कहेगा कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, इम्पॉसिबल है। सो आप ये कह रहे हो इसका मतलब आप शुद्ध भक्त नहीं हो, दैट्स ऑल। और वैसे भी शक्ल पे लिखा है सबकी, कोई शुद्ध बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। उसके लक्षण ही अलग है, शुद्ध भक्त होते हैं। हम तो चैंटिंग भी नहीं हो रही ढंग से, हम क्या शुद्ध भक्त हैं। वी आर ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे हैं। लेट अस एक्सेप्ट रियलिटी, रियलिटी यही है कि हम सब ट्राई कर रहे हैं। वो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर देन हम झूठ वूठ बोल के कपट करके और बोलते रहे हम शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को बहुत बुरा लगेगा। भगवान की ज़्यादा कृपा आएगी अगर आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है कृष्णा मुझसे नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, क्योंकि भगवान को वो सरलता अच्छी लगेगी, कपट अच्छा नहीं लगता भगवान को। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ठीक है सब माया में है, एवरी वन ऑफ अस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी माया, बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया इज टू कंसंट्रेट अटेंशन इन लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद कह रहे हैं बेस्ट तरीका है कि अगर आप इन सबसे बाहर होना आते हो तो भगवान की सेवा में फोकस करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, आपका काम होना चाहिए ठीक है मैं भगवान की सेवा पे फोकस करता रहूंगा। भगवान की सेवा में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर आप सोचोगे इधर उधर तो भगवान की सेवा में रुकावट होगी, आपका दिमाग खराब होगा ही, भगवान की सेवा में भी रुकावट हो रही है तो हम नहीं चाहते ना भगवान की सेवा में रुकावट आए, हमें चलते रहो। उसका तरीका यही है कि आपको समझना पड़ेगा स्वाभाविक है, ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं आई होप देयरफॉर दे विल नॉट गो एस्ट्रे, द मिसअंडरस्टैंडिंग मे बी क्लियर्ड अप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो वो कह रहे हैं चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, भक्ति और भक्तों का संग मत छोड़ो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद के गुरु भाइयों में भी, गौड़िया मठ था नहीं था, प्रभुपाद के गुरु भाइयों में भी लड़ाई हुई भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद। प्रभुपाद ने कहा मगर हम में से किसी ने भी कृष्ण भगवान को, ठीक है लड़ाई थी, डिफरेंस थे, मगर उन्होंने भी नहीं छोड़ा कृष्ण को, हमने भी नहीं छोड़ा कृष्ण को। मगर जनरली ऐसा होता नहीं, जैसे अगर लड़ाई हो जाए मंदिर में तो लोग मंदिर भी छोड़ देते हैं, भक्ति भी छोड़ देते हैं, नहीं कहते नहीं यार ये तो भक्ति विकास है छोड़ो इसको, सब ऐसे ही है, इनको तो बोलना भी नहीं आता है, इनके तो लड़ाई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, ऐसी होता नहीं आता ऐसा, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि व्यक्ति अलग है और भक्ति अलग चीज है। वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है वो बात अलग है, मगर भक्ति अलग है, व्यक्ति अलग है। व्यक्ति गिर सकता है, भक्ति तो भक्ति है ही, भक्ति तो कितने लोग करते आ रहे हैं, भक्ति तो शुद्ध है, आप भक्ति करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। माय गुरु महाराज ऑर्डर्ड अस टू एग्जीक्यूट हिज मिशन कंबाइनेडली, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सेपरेटेड। सो प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे गुरु महाराज ने बोला था कि सब मिलके प्रचार करो, मगर हम सब अलग अलग हो गए, टूट गए हैं, गौड़िया मठ टूट गया था बिल्कुल प्रभुपाद के जाने के बाद, भक्ति संत के जाने के बाद। प्रभुपाद ने कहा बट फिर भी हम सब ने कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार नहीं छोड़ा, सब अपना अपना प्रीचिंग करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने कहा कि ठीक है the idea is that provocation, misunderstanding may remain between one man and another, but a staunch faith in Krishna consciousness may not allow any material disruption. So, चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए आपके, फिर भी भक्ति कभी मत छोड़ना. प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति कभी मत छोड़ना, क्योंकि भक्ति छोड़ दोगे तो करोगे क्या उसके समय, और क्या क्या करोगे, क्या ऑप्शन क्या आपके पास? भक्ति छोड़ के क्या करोगे, क्या करोगे? कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है. भक्ति छोड़ के आप गंदगी मचाओगे अपनी लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी. खराब काम ही करेंगे ना, भक्ति नहीं करेंगे. और ऑप्शन भी क्या है, भक्ति करेंगे या खराब काम करेंगे, और क्या करेंगे? सो भक्ति छोड़ के तो कोई ऑप्शन भी नहीं है. व्हाट टू डू, भगवान को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है. कहाँ जाओगे भगवान को छोड़ के, कहाँ चले जाओगे? कहीं भी जाओगे अंत में क्या मिलेगा? मृत्यु, जन्म और मृत्यु मिलेगी. चाहे कितना ही रास्ता सुंदर क्यों ना लग रहा हो, अंत वही है. जो रास्ता भगवान तक नहीं पहुंच रहा उसका अंत जन्म मृत्यु और दुख है, बस. चाहे वो कितनी ही लुभावना, कितने ही सुखी क्यों ना लग रहा हो, इसलिए भगवान को कभी मत छोड़ो. प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर, द ओनली क्वालिफिकेशन वी हैव टू स्क्रूटिनाइज इज इफ वन इज एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एज फार एज वन एबल टू डू. तो कोई भी, अगर किसी, कोई भी लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी डिवोटी कुछ भी बोल रहा है, उसमें चाहे कितने दुर्गुण हो, एक अच्छा गुण जरूर है. क्या है? कि वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है. ये तो गुण है ना बहुत बड़ा उसमें. तो एक गुण देखो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो एक गुण उसके सारे दुर्गुणों को धीरे धीरे नष्ट कर देगा. कौन सा श्लोक है गीता में, किसी को पता है कौन सा श्लोक है? मीनिंग आता है सर, बोल दीजिए फिर क्यों कह रहे हो? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव वसमंतव्ये सम्यक व्यवस्थते ही सह. कृष्णा कह रहे हैं मेरे भक्त में चाहे कितनी दुर्गुण हो, चाहे कितनी सुदुराचारी हो, अगर वो मेरी भक्ति करता रहेगा तो सम्यक व्यवस्थते ही सह, कि धीरे धीरे वो साधु बन जाएगा. मेरे भक्ति के प्रभाव से उसमें अच्छे गुण आ जाएंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा. तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर इस तरह से उनको लेटर लिखा. फिर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज लिख रहे हैं, एंड देन प्रभुपाद ने लेटर एंड कर दिया. इट्स अ वेरी गुड लेटर एक्चुअली. हरे कृष्ण. कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? वन स्टॉप में. सो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी. और प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं, अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो भक्ति का स्टैंडर्ड ही क्या है? नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया आप डिस्टर्ब हो गए, किसी को लड़ाई हो गई डिस्टर्ब हो गए, तो भक्ति का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. इतनी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हो तो मृत्यु आएगी तो क्या होगा आपको? तो पागल ही हो जाओगे, तो मन लगेगा ही नहीं भगवान में, है नहीं? अभी तो मन लग सकता है, अभी तो आप बैठे हो आराम से, मगर जो लड़ाई होती है किसी के साथ तो मन नहीं लगता, है नहीं? तो यार फिर तो ऐसा हो गया. बट उस टाइम अगर आपने मन लगा लिया तो भगवान खुश होंगे. दैट्स द टेस्ट, वो टेस्ट है, और वो हर एक को पास करना पड़ेगा, वरना आप स्ट्रांग नहीं बनोगे माइंड में, माइंड में स्ट्रांग नहीं बनोगे. ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, क्वेश्चंस?
लड़ाइयां हो रही है डिवोटीज के बीच में, तो कुछ है उसका मतलब भक्ति में ध्यान कम है और हम डिवोटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा दे पा रहे हो अपनी भक्ति से, मतलब लक्ष्य भूल गए
डिवोटीज में. लड़ाई हो रही है नहीं, मतलब लड़ाई तो देखो आप कितने ही बेस्ट कर लो फिर भी होगी. आप कुछ भी बेस्ट कर लो, आप चाहे रोज लेक्चर दो कि हमें प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, खुश होना चाहिए, रोज लेक्चर यही हो रहा है. रोज सुबह आके गले मिलो, रोज रात को जाने से पहले गले मिलो, साथ बैठ के एक ही प्लेट में खाओ, हो सकता है नहीं फिर भी लड़ाई होगी, होगी नहीं होगी? जब पति पत्नी में लड़ाई होती है तो फिर यहां तो उस तरह की आसक्ति से भी कम आ सकती है, वो तो बहुत स्ट्रांग आ सकती है ना. सो वो कुछ नहीं कर सकते. तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये होगा. ठीक है, एक्सेप्टेड, वेयर देयर इज लव देयर इज वॉर, सुना है, जहां प्रेम है वहां लड़ाई भी है, जहां प्रेम नहीं है वहां लड़ाई भी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर लड़ाई नहीं हो रही तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब तब प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसका मतलब है आपका कोई संबंध नहीं है उस व्यक्ति से, है नहीं, सब कुछ इम्पर्सनल चल रहा है, होता है नहीं होता है, तब सब कुछ इम्पर्सनल चलता रहता है, तो वो गड़बड़ है एक्चुअली कुछ वहां पर, ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का, अदरवाइज इस पे क्वेश्चंस तो होने चाहिए क्योंकि यही तो होता रहता है सब जगह मतलब इस पे क्वेश्चन है तो कैसे क्वेश्चन है, हाँ क्या क्या,
केवल पंडित या मनोधर्मी द्वारा भगवान को नहीं समझा,
कौन पंडित, क्या
जैसे केवल पंडित या मनोधर्मी द्वारा भगवान को नहीं
समझा, हाँ नहीं समझ सकते तो तो क्या क्वेश्चन क्या है, मनोधर्म, मनोधर्म मतलब अपने माइंड से कुछ भी सोचते रहो तो नहीं समझ सकते, भक्तों से शास्त्रों से सुनना पड़ेगा, समझे, और पंडित मतलब केवल शास्त्रों का ज्ञान हो गया, पंडित बन गए, मगर अनुभव जीरो है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे तो वो पंडित, पंडित मतलब जो किताबें पढ़ता है सेवा नहीं कर रहा, वो भगवान को नहीं समझ सकता, मनोधर्म होता है जो सेवा भी नहीं करता किताबें भी नहीं पढ़ता, कुछ भी बस मनोधर्म, ठीक है, ठीक है, समझ गए, हाँ या नहीं, क्या क्या कह रहे हो आप, आपका क्वेश्चन था, आत्मा इसको फील कैसे करें, इसको फील करने का सिंपल रास्ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे फील होगा और कोई रास्ता ही नहीं, आप खुद नहीं पहुंच पाओगे फीलिंग तक, भगवान पहुंचाएंगे तब फील होगा, खुद नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते हैं वैसे मेडिटेशन करो और फील करो कि तुम, कहते नहीं कहते हैं मेडिटेशन करो आंख बंद करो फील करो, जस्ट फील कि तुम आत्मा हो, नहीं तो फील, तो पता नहीं वो लोग अपने, अमेरिका में ऐसा बहुत होता है, अमेरिका ये क्या है, इसको उठा के फेंको यार, तो खराब है, तो हरे कृष्णा, सो अमेरिका में ऐसा बहुत होता है कि वो लोग यही कहते हैं कि आंखें बंद करो मेडिटेशन करो और फील करो कि तुम सोल हो, बॉडी नहीं हो, कुछ स्पिरिचुअल सोल नहीं मतलब कुछ हायर रियलिटी हो, सोल की बात नहीं करते, नेचर कॉन्शियसनेस, तुम प्रेम हो, तो वो बस फील करते रहते अंदर, दैट्स ऑल मतलब, मगर उसको उससे कुछ होता नहीं, वो तो उसको कहते हैं मनोधर्म, मनोकल्पना, अपने मन से सोचना, तो ये चीजें मन से सोच के समझ नहीं आ सकती, क्योंकि फील कौन कर रहा है, मन ही कर रहा है ना, फील कैसे करोगे, मन से करोगे ना, यस या नहीं, मगर मन से आत्मा तक नहीं पहुंच सकते आप, कृष्णा कह रहे हैं अप्राप्य मनसा सह, मन से आत्मा तक कोई नहीं पहुंच सकता, आत्मा तक पहुंचने के लिए मन को भी छोड़ना पड़ता है और भगवान की हेल्प लेनी पड़ती है, सो वो तो भगवान का नाम लेके होगा और कुछ तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं, ठीक है ना, ठीक है, बस
तो फिर हम जब रोटी से लड़ाई करेंगे तो हमने फिर भक्ति से सीखा
क्या, वो तो बात सही है, मगर लड़ाई करोगे आप फिर भी लड़ाई करोगे, यही तो बात है, इसी को तो माया कहते हैं, थ्योरेटिकली आपको सबको पता है, थ्योरी थ्योरी है ना, ये तो कि भी अब लड़ाई करेंगे तो क्या सीखा है, कैसे है, अगर लड़ाई करेंगे तो भक्ति क्या है, बट द पॉइंट इज कि लड़ाई होगी, लड़ाई इसलिए नहीं होती हमेशा कि किसी से द्वेष है, इसलिए होती है कि कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, खराब नहीं है लड़ाई, भी मान लीजिए सपोज मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ, सपोज मैं करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम हो, और बलराम कह रहे हैं नहीं नहीं बड़ा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, हम सेमिनार करेंगे, तो दोनों भगवान के बारे में सोच रहे हैं, दोनों में भक्ति है, मगर मतभेद आ गया नहीं आ गया? एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फिर आप कह रहे हो कि अगर भक्ति है तो लड़ाई, हमें लड़ाई हो रही है तो भक्ति क्या समझ आई? नहीं, भक्ति है फिर भी लड़ाई हो रही है, फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए उससे फायदा होगा लोगों को, रैनी सेमिनार होना चाहिए उससे फायदा होगा, मतभेद हो गया, अब क्या करोगे इसका? भक्ति है ना दोनों में या नहीं है? तो फिर भी मतभेद है। तो प्रभुपाद तभी तो कह रहे हैं गोलोक में भी मतभेद है, वहां पर भी तो भक्ति है, वो होगा, मगर उसको सॉल्व करने का तरीका बात कर लो, बस इसका कंक्लूजन ही नहीं कि भक्ति नहीं है, ये गलत निष्कर्ष है, समझे? ये गलत, आप भी तो किचन में काम करते हो, लड़ते नहीं, लड़ लड़ के मर जाते हो वहां पे, मुझे पता है। क्या है, चार पांच औरतें काम कर रही हैं, वो उसकी शक्ल देख के वो उसकी वहां पे सब्जी काट के वहां पे दाल बना, मुझे पता है सब, मतलब दैट्स 100% अवॉइड नहीं कर सकते आप उसको। स्पेशली कुकिंग में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है ये, मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी इस्कॉन में कुकिंग की हुई है ना, कुकिंग में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि जो मेन आदमी बना रहा होता है वो उसका अपना आइडिया होता है मसाले वसाले डालने का, वो फिर कहेगा नहीं ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, कहता तू ही बना ले। किचन बहुत प्रोन है लड़ाई के, सो ठीक है, स्वाभाविक है, उसका अपना आइडिया, उसका अपना आइडिया। तो आप पहले से कोई, तो पहले से कोई प्लान बनाओ कि ठीक है हेड कुक कौन है, हेड मैं हूं, अब ये माता जी लीड करेंगी, बाकी उनकी हेल्प करेगी, इनके इंसाफ से बनेगा, बाकी हेल्प करेंगी, तो लड़ाई नहीं होगी। तो इसलिए जब पांडवों की शादी हुई थी द्रौपदी से, पता है ना, पांचाली, पांचों से शादी हो गई, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब द्रौपदी भी घबरा गई, क्या है मतलब पांच पति ऐसा, मतलब एक पति के कई पत्नियां हो सकती है, मगर एक पत्नी के कई पति नहीं हो सकते, ये शास्त्रों में कहीं नहीं है। तो द्रौपदी के जो फादर थे, तो क्या नाम था उनका, द्रुपद, तो वो तो पूरे साइक आउट हो गए, वो पूरे साइक आउट हो गए, उनको इन्फॉर्मेशन मिली ना कि द्रौपदी को, तो मतलब तो कुंती ने बोलते थे ना कि तुम बांट लो, तो धृष्टि ने बोला था अर्जुन, कितने अर्जुन ने जीत के लाया था ना, किसके ने लाया था, तो अर्जुन ने बोला कि मां मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, तो कुंती ने कहा बांट लो इसको, तुमने कहा लो। अब पहले जमाने में बहुत सीरियस लेते थे बात को, नहीं मतलब अब वो कह सकते थे चलो मजाक कर रही हो आप, तो हम तो द्रौपदी को लाए, तो मेरी वाइफ है, खत्म आता इशू, मगर वो इशू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं उन्होंने उस माँ की बात को बहुत सीरियसली ले लिया, तो इन्फॉर्मेशन द्रौपदी के फादर के पास पहुंची, द्रुपद के पास, वो पूरे साइकआउट हो गए, साइकआउट समझते हो ना, आउट हो गए, तो वो भागे भागे, उन्होंने कहा ये क्या है मेरी बेटी का, क्या कर रहे हो तुम, पांचों के पांचों, तुमने तो शादी कर ली, ऐसा थोड़ा ना होता है, बहुत बहुत ज्यादा एक्चुअली पंगा पड़ गया था। तो वहां पे व्यासदेव को आना पड़ा, और व्यासदेव आए, उन्होंने बोला कि तुम आप चिंता मत कीजिए, द्रौपदी के साथ होना ही ऐसा था, क्योंकि पिछले जन्म में इसने तपस्या की थी, और आई थिंक शिवजी से वरदान मांगा था कि आप मुझे सबसे अच्छा पति दो, पांच बार मांगा, तो शिवजी ने कहा अब पांच बार मांग जाए तुम्हारे पांच पति होंगे, क्योंकि एक किसी ह्यूमन में, किसी मानव में पांचों गुण साथ में नहीं हो सकते, तो भगवान में ही है, सारे गुण तो भगवान में ही है ना, मगर तुम कह रही हो मगर एक मानव में सारे गुण नहीं हो सकते, इसलिए तुमने पांच बार मांगा तो पांच पति होंगे तुम्हारे। तो उन्होंने कहा ये तो भाई होनी का करना था, ये तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये होना ही है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो व्यासदेव चले गए, तो उनके फादर थोड़े शांत हो गए, मगर भगवान विष्णु ने फिर नारद को भेजा, भगवान एक्चुअली कृष्ण है, सॉरी विष्णु का कह रहा हूँ, नारद आए, नारद ने कहा भैया तुम्हारा हो गया है, मगर तुम्हारी लड़ाई होगी देखना, क्योंकि पत्नी है क्या और पांच पति हैं, तो लड़ाई तो होनी ही होनी है, किसके साथ रहेगी, किसके साथ सोएगी, किसके साथ बैठेगी, किसके साथ खाएगी, कैसे होगा। सो उन्होंने कहा तुम लोग कुछ प्लान बना लो, तो फिर उन्होंने प्लान बनाया, एक साल एक हस्बैंड के पास रहेगी, दूसरे साल दूसरे हस्बैंड के पास, पता है ना, और फिर जब वो एक साल किसी के साथ रहेगी तो दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं करेगा, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, तो ऐसे करके ठीक रहेगा, अदरवाइज तो तुम सब लड़के मर जाओगे। तो पांडव भी लड़ सकते थे, यू सी, तो पांडव में भक्ति थी, ऑफ कोर्स थी। सो भक्ति के होते हुए भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि संसार ही ऐसा है, संसार में मतभेद होते हैं, गोलोक में भी है, क्योंकि संसार की बात नहीं, प्रभुपाद ये कह रहे हैं हम सब अलग हैं, हम सब एक, सारी आत्माएं एक नहीं है, आप अलग हो, मैं अलग हूं, भगवान अलग है, स्वभाव अलग है, ये स्वाभाविक है अलग मतभेद होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सॉल्यूशन है कि कुछ कम्युनिकेट करके उस कंफ्लिक्ट को सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन, समझ रहे हो, कम्युनिकेशन समझते हो ना, बात करो, उसको सॉल्व करो, प्लान बना लो कि भैया ऐसी प्रॉब्लम आगे आए ना, बस काम खत्म हो गया, फिनिश। अगर शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, भागोगे, भागोगे तो मर गया 100% भागोगे तो तुम मर गया, आप जब तक मुड़ोगे ना तब तक आपको खाई जाएगा। सो बेस्ट है शेर आ जाए तो बेस्ट आइडिया की लड़ लो, बेस्ट आइडिया ही है, क्योंकि वैसे भी मरे, लड़ लोगे तो शायद शायद वो मर जाए। नहीं, और पंजाब में हुआ था एक्चुअली, मुझे अचिंत्य प्रभु बता रहे थे अभी कुछ 10 साल पहले हुआ था, तो एक आदमी जंगल में गया तो शेर वेर आ गया, तो उसने कहा भागूंगा तो मरूंगा, उसने शेर से लड़ाई, उसने बस वो शेर पे उछल गया, उसने अपना हाथ डाल दिया अंदर शेर के मुंह में, तो शेर का सांस रुक गया, वो मर गया उसका हाथ कट गया बच गया वो ऐसा भी होता है, उसने पूरे अंदर डाल दिया उसके, उसका सांस घुट गया। कहते हैं कहते हैं सब, उसने देखा होगा डिस्कवरी में, उसने असली में डाल दिया, बच गया वो। सो ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस कर लो, ये मैनेजमेंट का फंडा है सबसे बड़ा, उसी टाइम फेस करो, कोई प्रॉब्लम है उसी टाइम फोन घुमाओ, उसी टाइम बोला, उसी टाइम बात करो, उसी टाइम, वरना वो बढ़ जाएगी, और सॉल्व कर लो, बस छोड़ो मत, बस दुश्मन को, आंख को, संशय को और जहर को अगर उसी टाइम आप काउंटर एक्ट नहीं करोगे तो मर गया, उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए चारों चीजों को। मैं नहीं कह रहा, शुक्राचार्य कह रहे, दुश्मन को, अग्नि को और संशय और जहर, मतलब सांप, सांप और सांप या जहर, जहर भी अगर चला जाए उसी टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, मर जाओगे ना, या सांप, दोनों चीजें, वरना आप गए काम से। सो बस ये बात है, दैट्स ऑल। ओके, सो किसने पूछा, एक पति की 5 पत्नियां हो सकती हैं,
एक पत्नी के 5 पति नहीं हो सकते, पत्नी के 5 पति नहीं हो सकते, लेकिन एक पति की 5 पत्नियां हो सकती
हैं, हो सकती है,
शास्त्रों में लिखा है,
शास्त्रों में लिखा
है, तो ये मुस्लिम का है वो सही है।
हाँ, वो हिंदू समाज में ये ब्रिटिशर्स रूल लेके आए थे, ब्रिटिशरों ने रूल लगाया था कि एक शादी हो। अफकोर्स राम भगवान ने एक शादी की क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मगर वो उन्होंने शपथ ली थी ऐसी, मगर शास्त्रों में आप इतने सारे किंग्स देखो, राजा देखो, कहीं पत्नियां नहीं होती थी, तो शास्त्रों में मना नहीं था, मतलब भगवान के फादर वसुदेव, उनके 18 पत्नियां थी, देव की रोहिणी तो बस मेन पत्नी थी, भगवान कृष्ण की खुद की 16,108। हाँ, तो अलाउड है, पॉलीगैमी कहते हैं इसको, ज्यादा शादी करना अलाउड है, बल्कि ज्यादा शादी होनी चाहिए। नहीं है, शास्त्रों में लिखा होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को उससे रक्षा मिलती है, मगर तब करनी चाहिए ज्यादा शादी जब आप उनको मेंटेन कर पाओ। मगर मुस्लिमों में प्रॉब्लम यह है कि वो गरीब होते हैं फिर भी इतनी शादी कर लेते हैं, नहीं मेंटेन नहीं कर पाते, और फिर उनका लोअर स्टेटस रहता है, वो गलत है। सो अगर आप में पैसे हैं, सब कुछ है, आप मेंटेन कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, उनको मेंटेन करो। सो मगर ये चीज अजीब सी लगती है सुनने में, नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा समाज में ऐसी प्रथा नहीं है ना, ऐसी प्रथा नहीं है, मगर वैसे सिंपल सी बात है, जहां मतलब एक खून की सजा क्या है, फांसी, दो खून की सजा, बस यही बात है। चाहे एक शादी हो, दो शादी हो, तीन शादी हो, प्रॉब्लम तो उतनी रहेगी। तो इट डजंट मैटर, आपने एक कर ली तो दो भी कर लो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, या तो करो ही मत या तीन भी कर लो, इट डजंट मैटर। सो अलाउड है, है क्या कह रहे हैं, बर्बादी है। तो वही तो कह रहे हैं, बर्बाद हो ही चुके हो, एक शादी करके तो दो कर लो, तीन कर लो एटलीस्ट, उससे फायदा एक्चुअली स्त्रियों की रक्षा होती है, क्योंकि स्त्री सिक्योरिटी ढूंढती है। जो फीमेल है ना, वो शादी क्यों करती है, उसका अलग माइंड चलता है, मेल अलग माइंड से शादी करता है। मेल शादी करता है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, सपने होते हैं ना उसके, हम दो, हमारे दो, मजा आएगा, उसके अपने सपने होते हैं उसके लिए। स्त्री ऐसे शादी नहीं करती, स्त्री करती सिक्योरिटी के लिए, मेन चीज होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नहीं इसलिए आप किसी से भी शादी करने जाओगे, वो लड़की कहेगी पहले भैया स्टेबल हो जाओ तब करेंगे, उसकी पहली कंडीशन ही होगी, उसकी पहली कंडीशन ये नहीं होगी कि पहले सुंदर बन जाओ, पहले डोले निकाल लो तब करेंगे। Who cares, you know? वो तो सब घूम रहे हैं। कोई कंसिडरेशन नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर दोनों में। तो उसको उसके मेंटल मेकअप ही ऐसा है, सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी नहीं, वरना स्त्री बहुत इनसिक्योर फील करेगी, लोनली फील करेगी, होता है नहीं होता है। सो इसलिए शास्त्र में लिखा है आप दो कर लो तीन कर लो शादी, तो उससे क्या होगा, स्त्रियों को जो सिक्योरिटी होगी ना, वो फैक्टर, सिक्योरिटी समझते हो ना, उनका मन शांत हो जाएगा, तो सोसाइटी खराब नहीं होगी, खराब नहीं होगी, वरना सोसाइटी खराब हो जाएगी। सब एक एक शादी करेंगे, बाकी औरतें जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, मतलब यू सी अनमैरिड फीमेल्स बहुत हो जाएंगी ना सोसाइटी में, अनमैरिड फीमेल्स हो जाएंगी तो सोसाइटी गंदी हो जाएगी, और क्या होगा। वरना सारी औरतें मैरिड होके रहेंगी तो आधा अच्छा है, ऐसी बात है। ऐसे ज्यादा पत्नियां होंगी, हाँ थोड़े मैन के लिए थोड़ा खराब है, मगर अच्छा भी है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि तभी उसको समझ आएगा कि काम वासना अच्छी चीज नहीं होती, वरना कभी समझ नहीं आएगा उसको, उसको कभी भी समझ नहीं आने वाला, उसको लगेगा ठीक है, उसको यही तो समझाना है भैया तुम फंसे ही ऐसे इसलिए हो इसमें, वरना ब्रह्मचारी नहीं बन जाते, सन्यासी नहीं बन जाते। यही समझाना है उसको, फिर समझ आएगा पिटके कि आई हैव डन अ रॉन्ग थिंग, और स्त्री को भी समझ आएगा फिर कि भैया मैं भी फंस गई। तो दोनों फिर संकल्प लेंगे, भैया अब अगले जन्म में अगला जन्म नहीं करेंगे हम, ना ही स्त्री है ना पुरुष है, हम आत्मा है, भगवान के पास चलते हैं, भैया इन फालतू की इच्छाओं से हम फंस गए हैं, वरना ये चीजें समझ नहीं आती बहुत आसानी से। तो इसलिए एक्चुअली इसलिए पूरा सिस्टम बनाया गया है, हमें लगता है कि दुर्दशा होगी बट सिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि हमें समझ आ जाए चीजें, वरना इस चीजें थ्योरी से समझ नहीं आती ना, थ्योरी नहीं समझ सकती है, ये नहीं कन्विंस नहीं होगी हम, हाँ कन्विंस नहीं होगा माइंड, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या तो पहले ही समझ जाओ या पिटके समझो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दो तीन पत्नियां होंगी तो डिमांड्स ही बहुत होगी, तो वो तो पूरा करते करते मर जाएगा, फिर कहेगा भैया अगले जन्म में मैं नहीं शादी वादी में कर लू, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, या ये जन्म खत्म करो यार, भगवान के पास चलो, ये शरीर ही छोड़ो, बेकार है भगवान, बस नॉनसेंस है। सो वो अच्छा है, वो तो अच्छा हो गया ना, सो दैट्स अ गुड आइडिया। एनीवे ये वैदिक सिस्टम है, ठीक है नहीं ठीक है। इसलिए शास्त्रों में तलाक नहीं है, पता है, तलाक देना अलाउड नहीं है, डाइवोर्स अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है डाइवोर्स, फिनिश। एक बार आप फंस गए तो फंस गए, फिर भुगतो और फिर समझो कि तुमने सही स्टेप नहीं लिया, और भगवान के पास चले जाओ बस। ये संसार अच्छा नहीं है, जहां पे तुम सोच रहे थे ना, अपने सपने बना रहे थे, सब गलत है। भगवान के साथ ही आनंद मिलेगा। सो इसलिए तलाक नहीं है, डाइवोर्स नहीं है, ये तो मॉडर्न सिस्टम है, डाइवोर्स है।
मुसलमान तो तीन बार बोलते हैं तो डाइवोर्स।
हाँ, मगर हमारे शास्त्रों में नहीं है डाइवोर्स। यू कांट गिव, एक बार विवाह कर लिया नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, अपने संस्कार है ना, विवाह शपथ लिया, आप नहीं छोड़ सकते उसको, इम्पॉसिबल है छोड़ना। मतलब मंदोदरी ने रावण को नहीं छोड़ा, इमेजिन, कयाधु ने हिरण्यकश्यप को नहीं छोड़ा, बल्कि कयाधु प्रहलाद महाराज की मां थी, हिरण्यकश्यप इतना बड़ा डीमन, सो नहीं छोड़ सकते।
पर ये कैसा कल्चर है गुरुजी, तीन बार बोला तलाक 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 और तलाक।
अब वो उनके यहाँ है, क्योंकि उनके यहाँ ना उस टाइम ना उनको कुछ यज्ञ पता था, जो इस्लाम रिलीजन है वो किन लोगों को दिया गया था, किस समय पे दिया गया था, ये भी देखना चाहिए। सो उनका सिस्टम है ऐसा। अब भगवान ने ऐसा क्यों बनाया मुझे नहीं पता, बट एक पॉइंट है, कोई भी अच्छा मुस्लिम होगा उसको हमेशा डिस्करेज किया जाएगा कि तलाक मत दो, मैक्सिमम पॉइंट तक। उनका लॉ है शरिया, शरिया है उनका लॉ, इस्लामिक लॉ शरिया होता है। तो अब उनके पास जाओगे ना, इमाम्स के पास, सूफी के पास, वो आपको तलाक लेने ही नहीं देंगे, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि पति पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए अपने एक दूसरे को, चाहे कितना ही हो जाए। सो हमेशा डिस्करेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, जब बिल्कुल ही लिमिट से बियॉन्ड चला जाएगा तो फिर ये अलाउड होता है, वरना अलाउड वहां पे भी नहीं है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट मैरिज लाइफ। बट सारे ब्रह्मचारी बन गए तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, आपको क्यों सोचना है, जो होगा होगा। आप ब्रह्मचारी बनो, हमें क्या लेना देना है दुनिया का। और सारे ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, 99.99% शादी करेंगे, ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, वो थ्योरी है, सारे ब्रह्मचारी बन गए नहीं हो सकता। इक्का दुक्का रहता है पूरी लाइफ ब्रह्मचारी, इक्का दुक्का। भक्ति सदा सरस्वती ठाकुर ने क्लब बनाया था, प्रभाजय गुरु ने, ब्रह्मचारी क्लब, सब ने शपथ ली थी हम ब्रह्मचारी बनेंगे बनेंगे, सिर्फ वो अकेले ब्रह्मचारी रह गए, बाकी सबने शादी कर ली। इतना आसान थोड़ा ना है।
मतलब शादी करोगे तो मतलब आपकी मतलब डिफिकल्टीज ज्यादा होंगी, तो अगर डिफिकल्टीज में रहकर भक्ति करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा।
अच्छा अच्छा, ऐसा लॉजिक देते हैं। क्वेश्चन समझ आया? लोग कहते हैं कि अगर आप विवाह करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रॉब्लम होगी, स्ट्रगल करोगे और मतलब मुश्किलों में भक्ति करोगे तो भगवान की ज्यादा कृपा आएगी। खाली रह के तो कोई भी भक्ति कर सकता है, मतलब खाली, जैसे हम खाली पड़े हैं ना, मतलब ये मतलब ही हो गया इसका। इसका मतलब ही हो गया, जैसे हम खाली पड़े हैं, यही हो गया ना। तो मैं तो ये बोलता हूं उनसे कि तुम्हारा मतलब कहना ये है कि हम खाली पड़े हैं, हमें कुछ करने को नहीं है, एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग। हमें भी सबको प्रॉब्लम्स हैं, पता है, कोई प्रॉब्लम से फ्री नहीं है। मैं तो अभी शादी की बात कर रहा था, मगर कोई प्रॉब्लम से फ्री नहीं है, सबको प्रॉब्लम्स है, शादी करो चाहे नहीं करो, ये संसार में प्रॉब्लम है। बस आपको लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबको होती है, अपनी अपनी अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं बस। मतलब आपको, एक गृहस्थ को अपनी वाइफ से लड़ना पड़ेगा, वाइफ हस्बैंड से लड़ेगी, जो ब्रह्मचारी हम फुल टाइम है, कहीं डिवोटी से प्रॉब्लम्स होती है, नहीं वो डिवोटी कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, आप पानी लाने को बोलो वो जूस ले आया, और टॉवल लाने को बोलो वो पेस्ट ले आया, कुछ और ही चल रहा है, उसको चैंटिंग करने को बोलो वो कुछ और ही कर रहा है, बहुत अजीब अजीब प्रॉब्लम्स आती रहती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, डिवोटीज की प्रॉब्लम्स, मतलब मेंटल प्रेशर बहुत होता है, फिजिकल प्रेशर नहीं होता फुल टाइम लाइफ में, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, फिजिकली तो आप आराम से रह रहे हो ना, मतलब प्रसाद भी है, रहने को भी है, ज्यादा मेहनत, पैसे भी नहीं है, पैसे भी आ रहे हैं, मगर मेंटल टेंशन बहुत होती है, और मेंटल टेंशन ज्यादा ज्यादा हैंडल, बहुत मुश्किल है हैंडल करना। फिजिकल टेंशन तो फिर भी कर लोगे आप, मेंटल नहीं कर सकते आप, वो बड़ा मुश्किल होता है। सो प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है। क्या कह रहे हो?
पंजाबी में कहावत था शादी के बारे में कि शादी
वो तो दिल्ली में भी ऐसे ही कहते हैं। हाँ बात तो सही है, बात ठीक है, लॉजिक ठीक है क्या? जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है, तो खा के गिना बचता है। आंसर क्या दोगे आप इसका? नहीं तो आप लोग आंसर क्या देते हो फिर इसका? हेलो नहीं आंसर थोड़ा ना हो गया। वेल ये वैसे कहावत उनके लिए जो भक्ति नहीं कर रहे, वो नहीं करेगा तब भी पागल हो जाएगा, उसका दिमाग ही आउट हो जाएगा, वो करेगा तब भी पागल होगा, वे कर ले। जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। हमारी शादी हो चुकी है भगवत गीता से, हमारी भी तो हो चुकी है मगर भगवान से, सब भगवान के साथ हैं, भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये तो बाहर के लोगों के लिए है। ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है नहीं ठीक है, सो दैट्स ओके। ऐसे मेरा ब्रदर है, मेरा भाई अमेरिका में, तो उसकी एज अभी 35 है, हो गया है, तो उसने शादी नहीं की कितने सालों तक अमेरिका में, तो वो पागल होने लगा, वो उसको सपने अजीब अजीब आने लगे, दिमाग खराब हो गया ना उसका। तो फिर तो उसने उससे मुझसे पूछा है मैं क्या करूं भाई, तू मतलब इस लाइन में मतलब सबको एडवाइस करते हो, मुझे भी एडवाइस करो। तो मैंने उसको कहा भैया शादी कर ले तू, वरना और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, भक्ति तो कर नहीं रहा, अब इन चीजों को तो रोक नहीं पाएगा, माइंड आउट हो जाएगा, इसलिए एटलीस्ट शादी करके रिस्पॉन्सिबल लाइफ जियो, एक वाइफ हो, अपनी फैमिली हो, आराम से रहो। तो उसको मैंने इस तरह एडवाइस किया, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। भक्तों के लिए तो हम पूरा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं भी मत करो, दैट्स ऑल, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, डोंट डू, बस ऐसा ही है बस। ओके क्या लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल फिनिश। भगवान का आश्रय लिया है तो किस बात की टेंशन है भैया? भगवान का आश्रय तो भगवान की बात माननी है, नहीं माननी है, पहला पॉइंट तो है, भगवान कह रहे हैं शादी मत करो, बस ये पॉइंट है। एनीवे पता है वैसे फाइनल टेक अवे पॉइंट है कि शादी ना शादी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस चक्कर में मत पड़ो आप लोग, चाहे आप करो चाहे नहीं करो, जरूरी नहीं है, जो नहीं करने वाले वो सब भगवान के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग मठ में पड़े रहते हैं और नॉनसेंस होते हैं, कुछ भी नहीं होता। सो आइडिया भक्ति करनी है, टाइम बचाना है और भक्ति करनी है, आइडिया ये है। खुद भी डिवोशन करो, अपनी वाइफ को भी डिवोशन में लगाओ, अपने बच्चों को भी डिवोशन कराओ, और जिसने जिसने विवाह नहीं किया वो अपनी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगाए। और प्रभुपाद कह रहे हैं सब भगवान के पास जा सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होती है मगर ज़्यादा इसमें नहीं सोचना चाहिए। That's all. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।